समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 बज चुके हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे। चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। हेलो शगुन।
Hello Jaya and a very warm welcome to all our listeners. A heartfelt hello. Good day everybody. This is Parikrama on 100.1 FM with Shagun Chopra and Jaya Bharti for you all. Well listeners, you have to stay tuned till the very end of the program because there is a lot to look forward to for roughly 30 minutes. Stay with us. We, as Jaya was telling us, we have a selection of news first. Then we'll proceed and we'll be discussing a very potent topic in our discussion segment. This is Dateline India. We'll also be presenting you reports from different states and also the capsules which we'll be playing for you. We'll be doing our tributes. We'll be paying our tributes precisely at the end of the program. First, we'll begin with the news headlines, right?
Yes, Sargun.
Relief operations continue in Punjab, Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh even as flood situation subsides. Indian Air Force rescues 541 people and airlifts over 10 tons of essential relief material.
Gujarat aur Pashchimi Rajasthan mein kal tak musladhar barish ka anuman.
India reaffirms its commitment to an open and inclusive WTO-led trading system, highlights need for export diversification and building resilient supply chains.
आज रात देश भर में पूर्ण चंद्र ग्रहण।
And India and South Korea to clash in final of Men's Asia Cup Hockey Championship at Rajgir this evening. Now listeners, we may proceed. This is our discussion segment Dateline India and the topic which we will be talking about and discussing today for you listeners. It's International Day of Clean Air for Blue Skies. Well, today, on September 7, the world marks the International Day of Clean Air for Blue Skies. And we obviously associate clean air and blue skies together. The day it promotes action to reduce air pollution, which causes 8.1 million premature deaths every year. That's a whopping number.
बिल्कुल सगुन, और वायु प्रदूषण को कम करने या वायु की गुणवत्ता में सुधार के लिए और अधिक प्रयासों के उद्देश्य से ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 सितंबर को नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया।
Yes, Jaya, you're right about that. And well, we are delving into this topic and we are considering and talking about the blue skies.
Yeah.
So the one thing that affects it a lot, it's air pollution. Well, it's the biggest environmental health risk of present time. It also exacerbates climate change. And secondly, it causes economic losses. Thirdly, it reduces agricultural productivity. So chances are, no matter where on earth you live, you're exposed to some form of air pollution almost every day.
हाँ शगुन, ये कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण की कोई सीमा नहीं होती
जी।
हमारे वातावरण की रक्षा करना और सभी के लिए स्वस्थ वायु सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है और इस दिशा में सहयोग करके हम समय, संसाधनों और प्रयासों के सामूहिक निवेश के माध्यम से वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं।
And let's tell our listeners, Jaya, about the theme. Well, the theme for this year, it is Racing for Air, which reflects the urgent need to address what United Nations Secretary General Antonio Guterres has called this as a global emergency. Of course, it is. We can see the impact already. And it is also a nod to the growing support for clean air among sports associations.
बिल्कुल शगुन, और इस वर्ष का थीम रेसिंग फॉर एयर बिल्कुल यथार्थी है कि हम स्वच्छ वायु के लिए दौड़ ही तो रहे हैं, लेकिन अगर हम सब मिल जाएं तो वायु प्रदूषण की समस्या से सक्रिय रूप से निपटकर परिवर्तनकारी बदलाव ला सकते हैं।
राइट।
और देखा जाए तो यह एक दोहरी समस्या है। पहला स्वास्थ्य पर प्रभाव, जो कि प्रदूषण के सूक्ष्म अदृश्य कण हमारे फेफड़ों, रक्त प्रवाह और शरीर में गहराई तक प्रवेश कर जाते हैं। ये प्रदूषक स्ट्रोक, पुरानी श्वसन संबंधी बीमारियां और फेफड़ों के कैंसर से होने वाली लगभग एक तिहाई मौतों के साथ साथ दिल के दौरे से होने वाली एक चौथाई मौतों के लिए जिम्मेदार है। सूर्य के प्रकाश में अगर कई अलग अलग प्रदूषकों की परस्पर क्रिया से उत्पन्न होने वाला भूस्तरीय ओजोन अस्थमा और पुरानी श्वसन संबंधी बीमारियों का भी कारण है।
So first point that you were focusing on, let me elaborate and we'll focus on the second trouble which exists.
बिल्कुल श्रगन।
It is climate change. Well, short-lived climate pollutants, these are among those pollutants most linked with both health effects and near-term warming of the planet, global warming. They persist in the atmosphere for as little as a few days or even up to a few decades. So reducing these, this can have an almost immediate health and climate benefit for those living in places where these levels, they fall. And air pollution, as we are also elaborating on this, air pollution is the single greatest environmental risk to human health and one of the main avoidable causes of death and disease globally, which even Jaya was telling us about.
हाँ शगुन, और विशेष रूप से विकासशील देशों में वायु प्रदूषण महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को कई तरह से प्रभावित कर रहा है, खास करके निम्न आय वर्ग की आबादी में, क्योंकि ये अक्सर लकड़ी के ईंधन और मिट्टी के तेल से खाना पकाने और गर्म करने के कारण उच्च स्तर के परिवेशी वायु प्रदूषण और घर के अंदर के वायु प्रदूषण में संपर्क में रहते हैं।
जी, एंड वी ऑल्सो नो that air pollution comes in many forms. So let's also elaborate on this particular point. There are two main types of air pollution, listeners, indoor and outdoors. Well, indoor air pollution, it comes chiefly from the burning of wood, charcoal, animal dung and other so-called solid fuels. These are called solid fuels which are used by billions around the world for cooking. So when these fuels, they are set ablaze, they release microscopic specks of dust, soot and black carbon. These are, they collectively, they are known as fine particulate matter, like PM. It stands for particulate matter.
यस शगुन, और अगर हम बाहरी वायु प्रदूषण के स्रोतों के बारे में बात करें तो इसमें कारखाने, मोटर वाहन, यहाँ तक कि जंगल की आग और धूल भरी आंधियां भी शामिल है।
जी।
और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सबसे चिंताजनक प्रदूषक है PM10 और उसका सबसे छोटा रूप PM2.5। दो प्रकार के सूक्ष्म कण जो अक्सर जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक गंधहीन गैस जो आमतौर पर लकड़ी, मिट्टी के तेल और चारकोल के जलाने से उत्पन्न होती है या उसके दहन से उत्पन्न होती है, ऐसा कह सकते हैं, और जमीनी स्तर का ओजोन, धुंध का एक प्रमुख घटक जो सूर्य के प्रकाश के कुछ गैसों के संपर्क में आने से बनता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो यौगिक जो अक्सर जीवाश्म ईंधन जलाने वाले कारखानों और वाहनों द्वारा उत्पन्न होते हैं।
एंड द प्रोसेस दैट जय इज टॉकिंग अबाउट, इट्स एक्चुअली कंबस्टन, एंड इवन नेचुरल इवेंट्स लाइक फॉरेस्ट फायर्स, दे कंट्रीब्यूट टू दैट। एंड लेट्स शेयर अ शॉकर विद आवर लिसनर्स, अ फैक्ट बेसिकली, 99% ऑफ पीपल ऑन अर्थ दे ब्रीथ एयर, द एयर दैट वी ब्रीथ, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर्स इट पोल्यूटेड. Well, particles less than 10 microns in size, also known as PM10, Jaya was also talking about it, can penetrate deep into the lungs, causing inflammation and damaging the lining of the respiratory tract. So PM2.5 is even more problematic. These particles are small enough to enter the bloodstream, where they can affect every organ in the body. So air pollution has been linked to a range of serious health problems, including pneumonia, heart disease, stroke, lung cancer and stillbirths.
और शगुन, ये हम बताना चाहेंगे अपने श्रोताओं को कि वायु प्रदूषण हमारे पसंदीदा शौक जैसे खेलना को कितना असंभव बना सकता है। इस प्रदूषण ने पूरे दुनिया भर के प्रमुख खेल आयोजनों को खतरे में डाल दिया है, क्योंकि PM2.5 जैसे प्रदूषकों का स्तर बढ़ रहा है और खिलाड़ियों के लिए खतरा पैदा हो रहा है। यही कारण है कि खेल नियामक संस्थाएं, जिनमें विश्व एथलेटिक्स भी शामिल है, जो ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं को मंजूरी देता है, स्वच्छ वायु के लिए प्रयास में शामिल हो गई है। इसने खराब वायु गुणवत्ता का पता लगाने के लिए स्टेडियमों के आसपास वायु गुणवत्ता सेंसर लगाए हैं, जो विशेष रूप से धावकों के लिए जोखिम भरा है।
जी, So air pollution feeds the climate crisis. Many of the same substances that make people sick also trap heat near the Earth's surface, stoking climate change. So this is a never-ending process, I should say. In fact, research suggests that these so-called super pollutants, which include methane and black carbon, they are responsible for a large percentage of global warming to date. But it is also important to realize that air pollution, it is avoidable.
और शगुन, जैसे कि हमने बात की कि वायु प्रदूषण कई रूपों में होता है और इसलिए इसका कोई एक समाधान नहीं है जो सभी के लिए उपयुक्त हो, लेकिन कुछ सरल किफायती उपाय जरूर हैं जिनसे शहर और देश की समस्या का समाधान शुरू कर सकते हैं. और ये उपाय हैं डेटा आधारित नीतियों और पूर्व चेतावनी प्रणालियों को सूचित करने के लिए मजबूत वायु प्रदूषण निगरानी प्रणालियां बनाना, मानव स्वास्थ्य की रक्षा के लिए निर्णय लेने के लिए वैश्विक डाटा और विश्वसनीय विज्ञान का लाभ उठाना.
Also, Jaya, limiting emissions from known sources of pollution through laws and regulations, also mapping out the economic benefits of addressing air pollution, which often far exceed the costs, and strengthening the institutions which are designed to address air pollution.
और विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट में देखा गया है कि तापन, खाना पकाने, परिवहन, कृषि और अपशिष्ट क्षेत्रों को लक्षित करने वाली एकीकृत नीतियों से वैश्विक स्तर पर खतरनाक रूप से उच्च स्तर के वायु प्रदूषण के संपर्क में आने वाले लोगों की संख्या आधी हो सकती है. आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यह मानता है कि वायु गुणवत्ता में सुधार से जलवायु परिवर्तन शमन में वृद्धि हो सकती है और जलवायु परिवर्तन शमन प्रयासों से वायु गुणवत्ता में सुधार हो सकता है.
Yes, Jaya. And so as responsible human beings, we must all promote electric vehicles, walking, cycling and mass transit to curb air pollution and then be able to breathe clean air.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने के का कि उनके पास क्या कुछ खास है.
वी आर बिगिनिंग विद बेंगलुरु. जया, कर्नाटका इंडस्ट्री बॉडीज हैव वेलकम द जीएसटी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. रिसेंटली द फेडरेशन ऑफ कर्नाटका चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड सीआईआई कर्नाटका हैव वेलकम द अनाउंसमेंट्स मेड बाय द 56th जीएसटी काउंसिल मीटिंग. वी हैव अ डिटेल्ड रिपोर्ट.
The landmark GST 2.0 reforms is a defining milestone in India's tax journey. CII Karnataka has termed it as a measure fully aligned with the aspirations of Viksit Bharat. The move to a two-slab structure along with digital simplifications and faster refunds will improve the ease of doing business. The Federation of Karnataka Chamber of Commerce and Industries has termed the reform as a step towards boosting production and increasing purchasing power in India. The President of the Federation, M.G. Balakrishna, has welcomed the move of the central government.
A lot of things which are bought, around 375 products which are bought to the lesser tariff. I think this would help the manufacturer also to produce more and people to buy more product because of the lesser price. This is a very good move by the central government.
The president of Vijayanagar District Chamber of Commerce, Ashwin Kothambari, has also expressed happiness over the central government decision on GST.
For common man use like paneer, milk, butter, pencils, school items, books, these all have been toothbrush, toothpaste, these all which are daily usable consumables were there. These have been brought down to 5%. This has helped the common man to boost their buying power in the country and do more business to the local business people in our country. Hence, we from Vijayanagar District Chamber of Commerce Industry welcome this move by the central government.
The GST reforms by the Union Finance Ministry will reduce costs, improve cash flow and increase competitiveness to give a significant boost to the industrial ecosystem. Sudhindra, reporting for Parikrama from Bengaluru.
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक नई इको टूरिज्म नीति लागू की है. इस नीति के अंतर्गत राज्य के विभिन्न वन वृत्तों में 77 इको टूरिज्म स्थलों का विकास किया जा रहा है. प्रदेश सरकार की इस पहल से आगामी 5 वर्षों में 200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है. अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से.
हिमाचल प्रदेश में नई इको टूरिज्म नीति का उद्देश्य प्रकृति की रक्षा करते हुए पर्यटकों को आकर्षित करना, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को हरित व सतत विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। प्रदेश अपनी बर्फ से ढकी पहाड़ियों, घने जंगलों, निर्मल नदियों और समृद्ध जैव विविधता के कारण सदैव प्रकृति प्रेमियों के लिए पसंदीदा गंतव्य रहा है। इस नीति के तहत राज्य के विभिन्न स्थानों जैसे शिमला, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, रामपुर, सोलन, नाहन, हमीरपुर, नालागढ़, धर्मशाला, पालमपुर, चंबा, डलहौजी, नूरपुर और रिकांगपियो में 77 इको टूरिज्म स्थलों का विकास किया जा रहा है। इनमें से 7 प्रमुख स्थलों शिमला के पॉटर हिल और शोघी, कुल्लू के सोलंग नाला और पार्वती घाटी के कसोल के लिए इको टूरिज्म ऑपरेटरों का चयन पहले से ही कर लिया गया है तथा शेष स्थलों का विकास चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। पर्यटक यहां ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग, फॉरेस्ट कैंपिंग, प्रकृति वॉक, होमस्टे जैसे पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों का आनंद ले सकेंगे। इस दिशा में हिमाचल प्रदेश अपनी समृद्ध जैव विविधता की रक्षा और संवर्धन में भी महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है और वर्ष 2030 तक वनों की संख्या को 30% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। यह प्रयास न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं बल्कि हरित और व्यवस्थित वन क्षेत्रों के निर्माण से पर्यावरण प्रेमियों को आकर्षित करके सतत पर्यटन को भी बढ़ावा देते हैं। इस इको टूरिज्म गतिविधि का एक महत्वपूर्ण भाग स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित बनाना है। स्थानीय युवाओं को नेचर गाइड और मल्टीपर्पज वर्कर के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है और अब तक 70 से अधिक गाइड और 135 मल्टीपर्पज वर्कर्स को हिमाचल प्रदेश इको टूरिज्म सोसाइटी द्वारा प्रशिक्षित किया जा चुका है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिमला से मैं रितेश कपूर।
आज पूर्ण चंद्र ग्रहण है। यह ग्रहण पूरे भारत में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बंगलुरु के साथ ही एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों में भी यह पूरी तरह नजर आएगा। चंद्र ग्रहण आज रात 8:58 से शुरू होकर कल तड़के सुबह 2:25 पर समाप्त होगा। एक दुर्लभ खगोलीय घटना, एक दशक में सबसे लंबे ग्रहणों में से एक होगी। इसकी अवधि 82 की होगी और चंद्र ग्रहण 5 से अधिक समय तक रहेगा। पृथ्वी के सूर्य और चंद्रमा के बीच आने पर चंद्र ग्रहण होता है। इस दौरान चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है। यह घटना केवल पूर्णिमा के दिन ही होती है। इसके अंतर्गत पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों एक रेखा में होते हैं। अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल।
So there is a lot of excitement among spectators for the final match of the Men's Asia Cup Hockey Championship between India and South Korea to be played this evening. The match, it will start in Rajgir, Bihar at 7:30 PM today. More from our correspondent.
In Asia Cup hockey, the Indian team under the leadership of Captain Harmanpreet Singh has proved through its performance after a gap of 8 years, it is a strong contender for the Asia Cup title. If India wins today, the victory will also secure its qualification for the upcoming Hockey World Cup to be held in the Netherlands and Belgium. Given India's excellent coordination and skills, the team is considered to have an upper hand against Korea. However, defending champions Korea have capability to make upset. The Korean team proved its capacity when it surprised everyone by defeating Malaysia in their previous match despite trailing earlier. Overall, today's final promises to be thrilling contest between India and Korea. Dharmendra Kumar Rai, Akashwani News, Rajgir.
यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का फाइनल आज स्पेन के कार्लोस अल्काराज और इटली के जैनिक सिनर के बीच खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 से होगा। यह तीसरा मौका है जब अल्काराज और सिनर किसी बड़ी प्रतियोगिता के फाइनल में आमने सामने हैं। अब आइए बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। इस क्रम में सबसे पहले हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों को याद करेंगे।
महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दिस डे इन द ईयर 1931 इन लंदन
टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। द साइमन कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन 1927। द रिपोर्ट of the Simon Commission became the basis of discussions held in Britain to consider the future constitution of India.
These discussions were held in a series of meetings in three sessions and were known as the Roundtable Conference. The first session, which started in November 1930, had 73 representatives from all Indian states and all parties except the Indian National Congress.
Indian National Congress was waging a civil disobedience movement against the colonial British government. The second session from September 1931 was attended by Gandhiji as the Congress representative. It failed to reach an agreement, either on the constitution or on communal representation.
The third and the last session was held in November 1932, was shorter and less important, with neither the Congress nor the British Labour Party attending.
It was the result of deliberations at the Round Table Conferences that the British government came up with the Government of India Act 1935, which established provincial autonomy in India.
Today is also the death anniversary of a prolific writer and freedom fighter, Ram Briksh Benipuri. Ram Briksh Benipuri hailed from Muzaffarpur in Bihar.
Benipuri took active part in the agitation against the Rowlatt Act and participated in the non-cooperation movement. Benipuri was a leading light of the Congress Socialist Party.
He had also been the president of the Provincial Kisan Sabha of Bihar and the vice president of the All India Kisan Sabha. At the 50th session of the Congress held at Faizpur in 1937, he moved a resolution on the abolition of Zamindari. While imprisoned in Hazaribagh jail, he also initiated a campaign, Janehu Todo Abhiyan, against casteism.
Benipuri was also a close associate of Jayaprakash Narayan. It was Benipuri who helped Jayaprakash Narayan escape from the Hazaribagh Central Jail in 1942.
Ram Briksh Benipuri was a prolific writer. Benipuri's first writing was published in 1916 in the paper named Pratap from Kanpur. The papers he edited were Tarun Bharat, Kisan Mitra, Golmaal, Balak, but the publication of Yuvak in 1929 made him more popular.
His stories picture the true rural life of North Bihar. His dramas covered mostly ancient events. He wrote Amba Palai during his detention in the Hazaribagh Central Jail. On this day in 1933 was born Ella Bhatt, a pioneer in women's empowerment and grassroots development. Ella was born in Ahmedabad. As a teenager, she was influenced by the freedom movement, which was at its peak then. Influenced by the Gandhian philosophy, Ella pursued the path of non-violence and self-reliance.
She is also known as the gentle revolutionary because of the way she brings women's issues to the forefront without resorting to violence. Ella Bhatt founded the Self-Employed Women's Association in India in 1972.
She was awarded the Raman Magsaysay Award for Community Leadership in 1977. The Government of India also awarded Ella Bhatt with the Civilian Honour of Padma Shri in 1985 and the Padma Bhushan in 1986.
She has served as a member of the Indian Parliament from 1986 to 1989.
Ella Bhatt is associated with a group called The Elders. The Elders is an independent group of global leaders working together for peace, justice and human rights. Ella is particularly involved with the initiative on equality for women and girls, including on the issue of child marriage.
Ella Bhatt has been honoured with the prestigious Radcliffe Medal and the Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development 2011 for her lifetime achievements in empowering women through grassroots entrepreneurship.
आज जयंती है अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला नीरज भानोट की. वह मुंबई में पैन एम एयरलाइंस की विमान परिचारिका थी. 5 सितंबर 1986 के पैन एम उड़ान 73 के अपहृत विमान में यात्रियों की सहायता और सुरक्षा करते हुए वे आतंकवादियों की गोलियों के शिकार हो गई थी. आतंकियों से लगभग 400 यात्रियों की जान बचाते हुए उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया था.
वेल, हर स्टोरी It inspired a generation and led to changes in the aviation security procedures worldwide. Well, Neeraj Bhanot was posthumously, as Jay was telling us, received several awards, including the Ashok Chakra, which is our highest civilian award for bravery.
और उनकी कहानी पर आधारित। अशगुन उनकी कहानी पर आधारित 2016 में एक फिल्म भी बनी नीरजा, जिसमें उनका किरदार सोनम कपूर ने अदा किया था।
आजा दौड़ेंगे यादों के बक्सों में जिंदा सी खुशबू है कहती है।
Yes, listeners, today we are also remembering Keith John Moon, the drummer for the rock band The Who, and he is regarded as one of the greatest drummers in the history of rock music, and he has been noted for his unique style of playing, his eccentric, often self-destructive behavior. So let's listen to a song from his band, The Who.
आज ही जयंती है पी भानुमति के नाम से प्रसिद्ध पालीवाई भानुमति रामकृष्ण की, जो भारतीय अभिनेत्री के साथ साथ फिल्म निर्देशक, संगीत निर्देशक, गायिका, निर्माता, उपन्यासकार और गीतकार भी थी। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें साल 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें भारत के 30वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सम्मानित किया गया। साहित्य के क्षेत्र में भी श्रेष्ठ कहानीकार के रूप में पी भानुमति की बड़ी प्रतिष्ठा है। उनकी जयंती पर उन्हें उनकी ही आवाज में एक श्रद्धांजलि।
Listeners, today, we're also remembering another musician. His name is Charles Hardin Holly, and professionally, he's been known with the name Buddy Holly. Well, the central and pioneering figure of rock and roll. And he made his first appearance on local television in 1952, long back. And following year, he formed the group Buddy and Bob with his friend Bob Montgomery. Well, I have selected a beautiful song and very upbeat one. Listen in.
Well, that'll be the day when you say goodbye, yeah. And that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Well,
आज संस्कृत के विद्वान और महान दार्शनिक गोपीनाथ कविराज की भी जयंती है। उनके कार्यों को देखकर 1934 में सरकार ने उन्हें महामहोपाध्याय की उपाधि प्रदान की। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा था। और आज जन्मदिन है दक्षिण भारतीय सिनेमा के जाने माने अभिनेता मोहम्मद कुट्टी इस्माइल पनपरांबिल, जो ममूटी के नाम से प्रसिद्ध हैं। एशियन टेलीविजन अवार्ड्स 2010 द्वारा कराए सर्वेक्षण में ममूटी को सबसे लोकप्रिय मलयाली एक्टर घोषित किया गया है। पद्मश्री, डीलिट, 3 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, केरल सरकार के 7 पुरस्कार और फिल्म फेयर के 11 पुरस्कार पाने वाले मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार ममूटी को पुलिस के भूमिका में हमेशा से दिलचस्पी रही है। 80 के दशक में यवनिका फिल्म में पुलिस अधिकारी की भूमिका से ही उन्हें स्टार बनने का मौका मिला था। ये सुनते हैं इस फिल्म का एक गीत।
Well, yes, we are talking about Mamooty. Well, the superstar and has been ruling the hearts of people along with the film screen for the last 54 years. Well, the 3-time National Award winner has featured in more than approximately 400 films in his career so far. Well, we have another song that we would play for you. Listen in, listeners.
Khamoshi hai, ek baja hai, khali rasta bol raha hai.
वैसे तो ममूटी ने हिंदी फिल्मों में बहुत कम काम किया है, लेकिन ये जो हमने गाना सुना ये हिंदी फिल्म धरती पुत्र का था।
जी लिसनर्स, Today, let's also talk about a novelist, a writer, screen director and director, James Clavell. Well, he has written and best known for this particular novel, a number of which have had television adaptations. This particular novel, which I am talking about, which is pretty famous amongst the readers, it is The Fly. And this is based on a short story and has been adapted in screenplays.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए जया और शगुन को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की.
थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन. वी होप यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड.
नमस्कार.